हरे कृष्ण। पिछले कई रविवारों से राज ऋषियों की कथा चल रही है। पिछले रविवार को ध्रुव महाराज की कथा हमने सुनी। कथा पूरी हुई नहीं, कथा आज पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। शायद आप में से कई भक्तों ने ध्रुव महाराज की कथा पहले कई बार सुन ली होगी, परंतु भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की कथा इतने सुंदर होते हैं, मधुर होते हैं कि उनको बार बार सुनने से भी हम उब नहीं जाते हैं, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। जो भी कुछ भगवान से संबंधित होता है वो हमेशा फ्रेश लगता है, नित्य नव नवायमान। ये भौतिक चीजें, संसार की बातें, वो थोड़े समय के बाद सड़ जाती हैं, पुराने घिसी पिटे लगने लगती हैं, लेकिन भगवान की कथाएं हमेशा नवीन लगती हैं। मन प्रसन्न हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने ध्रुव महाराज की कथा गदाधर पंडित से सुनी थी और उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने गदाधर पंडित से यही कथा 108 बार सुनी। ऐसा उन्होंने नहीं कहा एक बार सुनने से, अरे हमने सुन लिया, हम सब जानते हैं, हाँ वो जंगल में गए, भगवान आए, प्रार्थना किया, भगवान ने उनको ध्रुव तारा दे दिया, मामला समाप्त, कथा खत्म। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने 108 बार ये कहानी सुनी, कथा सुनी, और 108वें बार जब भी सुन रहे थे तो इतने ही ध्यान से सुन रहे थे जितना कि वो पहली बार जब सुन रहे थे। ऐसा नहीं कि हमने 100 बार सुन लिया, अरे क्या वही वही चीजें, अभी क्या है, चलो अभी थोड़ा सो जाते हैं, अभी 5 मिनट सो जाएंगे, ये बात तो हमने बहुत बार सुन लिए हैं, बीच में थोड़ा समय हम आराम करते हैं, कथा तो चलता रहता है, हर रविवार को होता रहता है। नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने कथा को पूरी तरह से ध्यान से लगन से सुना। तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि ध्रुव महाराज के प्रति जब अपमान हुआ और अपने माता सुनीति के पास आए और सुनीति ने कहा कि मैं तुम्हें मदद नहीं कर सकती, केवल श्री भगवान श्री नारायण ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, तो वन में जाके उनको प्रसन्न करने के लिए तपस्या करो। ध्रुव महाराज ने वैसे किया और 6 महीने की तपस्या के बाद स्वयं भगवान उनके सामने प्रकट हुए। वही भगवान जिनके ऊपर ध्यान करने के लिए उनके गुरु श्री नारद मुनि ने उनको आदेश दिए थे और जिनके ऊपर अपने अंतःकरण में वो एकाग्र चित्त से ध्यान कर रहे थे, वही भगवान अचानक उनके सामने आकर प्रकट हो गए। जब ध्रुव महाराज ने देखा कि अंतःकरण में जो भगवान स्थित हैं वो मेरे ध्यान से अभी ओझल हो गए, थोड़े विचलित हो गए कि इतने लंबे समय तक मेरे ध्यान में, मेरे हृदय में मैंने भगवान को पकड़ लिया था, अचानक मेरे अंतःकरण से कहां ओझल हो गए, अदृश्य हो गए। उन्होंने विचलित अवस्था में आंखें खोल दी और देखा कि भगवान, वही भगवान उनके सामने वहां पर प्रकट हैं। बड़ा सुंदर रूप जैसे कि नारद मुनि ने वर्णन किया था, उनकी आंखें कमल जैसे, काले बाल, कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स, पीतांबर, और उनके चरण कमलों के नख चमक रहे थे और हसमुख चेहरा, हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पे थी, और वो खड़े हुए थे एक कमल पुष्प के ऊपर। ये दृश्य अष्टांग योगी जो कि आगे बढ़े हुए होते हैं अपने हृदय में देखते हैं। ये है परमात्मा का स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण का वो स्वरूप जो कि हर प्राणी के हृदय में विराजमान है। तो ध्रुव महाराज ने देखा और फिर वो कुछ बोल नहीं पाए थे। वैसे 5 साल के बालक, 5 साल के बालक को वैसे ज्यादातर पता नहीं चलता है कि कौन से परिस्थिति में क्या बोलना चाहिए। वैसे कई बार बड़े लोगों को भी नहीं पता होता है, तो बच्चों को भी तो और तकलीफ होती है। और इतने शिक्षित नहीं थे कि वो सुंदर कविता बोल दें या कोई श्लोकों की रचना करें, इतना तो ज्ञान था नहीं ध्रुव महाराज के पास। लेकिन जब भगवान श्री हरि ने अपने शंख से ध्रुव महाराज के सर से स्पर्श किया, तो तुरंत सारा वैदिक ज्ञान ध्रुव महाराज के हृदय में प्रकाशित हो गया। अचानक जिस प्रकार से हम कोई फैन या बल्ब चलाने के लिए स्विच चालू करते हैं, बटन चालू करते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री हरि के शंख के स्पर्श से सारा वैदिक ज्ञान ध्रुव महाराज के हृदय में हो गया। केवल ज्ञान नहीं बल्कि विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर होता है? ज्ञान मतलब बुद्धि के स्तर पे पुस्तकीय ज्ञान, और विज्ञान मतलब जब उसी ज्ञान का अनुभव हम करते हैं उसको विज्ञान कहते हैं। जैसे गुलाब जामुन के बारे में अगर हम बहुत कुछ जाने तो यह है ज्ञान। कैसे बनाया जाता है, उसका रंग क्या है, आकार क्या है, दिखने में कैसा है, यह है ज्ञान। लेकिन जब गुलाब जामुन को खाते हैं, उसको चखते हैं, वो ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ध्रुव महाराज ने अपने गुरु महाराज नारद मुनि से सुना था भगवान के बारे में, लेकिन अब प्रत्यक्ष उन्होंने इस बात का अनुभव किया। जैसे जैसे हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, ये कई चीजें साथ साथ होने लगती हैं। भक्ति ही परेशान भवो विरक्ति अन्यत्र चैषत्र का एक काल है, प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्यु तुष्टि पुष्टि क्षुत अपायोनुघासम। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि भक्ति पर ईश अनुभव मतलब भगवान का अनुभव, और तीसरी बात विरक्ति, ये तीन चीजें एक साथ में धीरे धीरे भक्त के हृदय में विकसित होने लगती हैं, जैसे जैसे वो भक्ति करने लगता है। जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति भोजन खाने बैठ जाता है तो तुष्टि पुष्टि क्षुत अपायो, ये तीन चीजें एक साथ होती हैं। तुष्टि मतलब उसे आनंद मिलता है भोजन का, अरे वाह कितना अच्छा रसगुल्ला है, कितनी अच्छी खीर है, स्वाद मिलता है, आनंद आता है, संतुष्ट हो जाता है जो प्रसाद ग्रहण करता है। साथ साथ में पुष्टि, शरीर में ताकत भी बढ़ जाती है, जैसे जैसे भोजन ग्रहण करता है तो पोषण शरीर में खुद ब खुद आ जाता है। और तीसरी बात क्षुत अपायो मतलब भूख मिट जाती है। जब हम भोजन के लिए बैठते हैं तो पेट खाली रहता है तो भूख काफी रहती है, भूख की वजह से पीड़ा भी रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम खाते हैं भूख भी मिट जाती है। नव योगेंद्र श्रीमद् भागवत में समझाते हैं कि जिस प्रकार से आदमी जब खाने बैठ जाता है ये तीन चीजें एक साथ हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करने लग जाता है तो ये तीन चीजें उसके हृदय में खुद ब खुद प्रकट हो जाती हैं। और वो क्या है? एक है भक्ति, भगवान के प्रति उसके हृदय में प्रेम भावना बढ़ जाती है। दूसरी बात भगवान का अनुभव प्रत्यक्ष उसे होने लगता है। और तीसरी बात संसार से विरक्ति होने लगती है, संसार के भोग से। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज को भी ये तीनों चीजों का अनुभव होने लगा, और प्रत्यक्ष इस समय उन्होंने भगवान का अनुभव किया, भगवान को अपने आंखों के सामने देखा। बहुत बड़ा सुंदर रूप था और उस समय उनको पता नहीं चला कि क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कैसे नमस्कार करना चाहिए, कैसे स्वागत करना चाहिए। जैसे कि अचानक मान लीजिए आपके घर में प्रधानमंत्री आ जाए बिन बोले, दरवाजा खटखटाए खटखटाए भी नहीं, सीधे अंदर आ गए और आप अंदर बैठे हैं, अचानक आपने ऊपर सिर करके देखा तो प्रधानमंत्री आए हैं। आप समझेंगे नहीं, अरे क्या करना है, स्वागत करना है, नमस्कार करना है, क्या करना है, आप इतने आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो ध्रुव महाराज इतने आश्चर्यचकित हो गए, उनको पता नहीं चला कि भगवान का स्वागत कैसे करना चाहिए, बस हड़बड़ा गए उधर। तो भगवान को कृपा हुई, भगवान ने कृपा के ध्रुव महाराज के ऊपर शंख से स्पर्श किया और फिर सारा विज्ञान उनके हृदय में आ गया। और फिर ध्रुव महाराज ने सुंदर सुंदर स्तुतियां प्रस्तुत की और भगवान इन स्तुतियों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। और ऐसे स्तुतियां जिनका सुखदेव महाराज जब वर्णन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये स्तुति केवल ऐसे व्यक्ति कर सकता है जो बहुत बड़ा कवि है और बहुत बड़ा दार्शनिक है, अनुभवी व्यक्ति है आध्यात्मिक क्षेत्र में। 5 साल के बालक साधारणतः ऐसे कविता बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। इसका मतलब है कि भगवान के प्रति जो प्रार्थनाएं होती हैं वो साधारण प्रार्थना नहीं होती है। इतिहास में हम देख सकते हैं कि कितने सारे बड़े बड़े कवि हुए हैं और इन कवियों ने सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं, लेकिन संसार के बारे में भले उनको कोई पुरस्कार मिला हो, साहित्य एकेडमी का पुरस्कार मिला हो, नोबेल पुरस्कार मिला हो, लेकिन जब तक वो शुद्ध भक्त नहीं है और जब तक वो भगवान श्री हरि का गुणगान शुद्ध चित्त से श्रद्धा भाव से नहीं कर रहे हो, ऐसे कविताओं का उपन्यासों का कोई मूल्य नहीं है। और ऐसे कविताएं लिखने के लिए ये भी माया का खेल है। जड़ विद्या ए मायार वैभव, भक्ति विनोद ठाकुर हमारे संप्रदाय में एक महान आचार्य हुए, वो बताते हैं कि ये संसार का ज्ञान, भले वो विज्ञान हो, गणित हो, भूगोल हो, इतिहास हो या कविता हो, जो भी कुछ हो, जब तक ये ज्ञान या विज्ञान इस संसार से संबंधित है और भगवान से अलग है तो ये माया का वैभव है। तो ये जो बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि जिनको बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं, वो भी माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। ये भी जड़ विद्या है, क्योंकि इससे माया का, भगवान का कोई संबंध नहीं होता और इसलिए माया के प्रभाव में आकर वो ऐसे कविताएं लिखते हैं। और इस प्रकार से भगवान के बारे में कुछ बोलने के लिए उनके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं होता, इसलिए हमें कोई संसारी व्यक्तियों से भगवान के भजन नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि भगवान का भजन, भगवान की प्रार्थना, भगवान की स्तुतियां ये केवल आध्यात्मिक शक्ति से उत्पन्न होती हैं। भगवान के दिव्य शक्ति से प्रेरित होकर ही कोई व्यक्ति कोई कविता या प्रार्थना बोल सकता है। किसी भौतिक व्यक्ति को भगवान के सामने लाइए और कहिए उनको प्रार्थना कीजिए, वो क्या प्रार्थना करेंगे? ज्यादा से ज्यादा ये प्रार्थना करेंगे, मुझे धन दो, मेरी बीमारी दूर करो, मेरी लड़की की शादी करा दो, ज्यादा से ज्यादा यही। लेकिन ध्रुव महाराज जैसे शुद्ध भक्तों से हम सीख सकते हैं कि हमें प्रार्थना करनी है तो ऐसे करनी चाहिए। तो ऐसे प्रार्थनाएं हमें सुननी चाहिए, न कि जो बाहर के दुनिया में कैसेट वगैरह बनाकर लोग बेचते हैं, जो भक्त नहीं है खुद, जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं भगवान के, ऐसे लोगों के मुख से या ऐसे लोगों के विरचित कविताएं वगैरह सुनने से हमें कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिला। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वैसे ध्रुव महाराज बोल रहे थे कि संसार में रहने वाले लोगों को कोई कल्पना नहीं है कि भगवान की भक्ति कितनी बड़ी चीज है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को जान लेता है वो समझ जाता है कि भगवान की सेवा का अवसर ये इतनी बड़ी चीज है जिसके सामने कि भगवान के निराकार में लीन होना ये भी एक तुच्छ चीज है। भगवान की भक्ति एक सागर के बराबर है और भगवान के निराकार में लीन हो जाने का जो आनंद है वो एक छोटे से बूंद के बराबर है। तो कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो सागर को त्याग कर इस बूंद के पीछे जाएगा? अगर ब्रह्मानंद भगवान के निराकार में लीन होने का आनंद भी एक बूंद के समान है, तो संसार का जो भौतिक भोग है वो और भी कितना तुच्छ होगा। जब मैंने आपके भक्ति को प्राप्त कर लिया है तो मैं समझ सकता हूं कि ये सारे ब्रह्मांड का राजपद भी बिल्कुल तुच्छ है, और मैं केवल अभी आपकी भक्ति चाहता हूं, आपकी सेवा चाहता हूं, मैं और कुछ नहीं चाहता। इस प्रकार से ध्रुव महाराज ने जब स्तुतियां की तो भगवान बोलने लगे कि हे ध्रुव, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी प्रार्थना सुनकर, लेकिन जिस भावना से तुम मेरे पास आए थे, जिस इच्छा को लेकर मेरे पास आए थे, उस इच्छा को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य होगा। तो मैं तुम्हें एक ऐसे राजपद प्रदान करने जा रहा हूं जिसको कि आज तक इतिहास में किसी ने भी प्राप्त नहीं किया है। ये लोक मैंने आज तक किसी को नहीं दिया हुआ है, तुम पहले व्यक्ति हो, और मैं तुम्हें स्वयं मेरा धाम दे रहा हूं। देखिए भगवान के गुण क्या हैं। भगवान भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल मतलब वो भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, और जब भगवान देखते हैं कि मेरे पास कुछ और देने के लिए है नहीं, तो वो अपने आप को ही सौंप देते हैं भक्तों के हवाले, अपना धाम ही दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ब्रह्मा जी से ऊंचा पद कौन सा मिल सकता है, तुम इस इच्छा लेकर ये इच्छा लेकर आए हो, तो इससे बढ़कर केवल एक ही स्थान है और वो है मेरा धाम। तो इस ब्रह्मांड के भीतर एक वैकुंठ लोक है जिसको श्वेत द्वीप कहते हैं। ये श्वेत द्वीप एक तारे के अंदर है, और ये तारा है जिसके जिसकी इर्द गिर्द घूमते हैं सारे नक्षत्र, सारे अन्य ग्रह और लोक, और आज से ये तारा ध्रुव तारा कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्षीर सागर है और मैं भी वहां निवास करता हूं। जब ये सारे सृष्टि का संहार हो जाएगा तब ये लोक का नाश नहीं होता, और इसीलिए तुम यहां पे 36,000 साल राज करोगे पृथ्वी में, और इसके बाद तुम्हें इस वैकुंठ लोक की या ध्रुव तारा की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिताजी जब वृद्ध हो जाएंगे, वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करेंगे, जंगल में चले जाएंगे तपस्या करने के लिए, तो राजपद तुम्हें प्रदान करके जाएंगे। 36,000 वर्ष तुम यहां राज करोगे, बहुत भोग कर पाओगे संसार का, और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बुढ़ापा नहीं होगा। और इस प्रकार से 36,000 साल जब बीत जाएंगे तो तुम इस ध्रुव तारे की या वैकुंठ लोक की प्राप्ति करोगे और मेरे पास में आओगे। इस दौरान तुम्हारा भाई उत्तम, वो जब शिकार करने जाएगा जंगल में, उस समय एक यक्ष के हाथों से उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी मां सुरुचि शोक से पागल होकर उसे ढूंढने जाएगी जंगल में, और जंगल में घूमते घूमते एक दावानल हो जाएगा, जंगल में आग लग जाएगा और आग में वो मर जाएगी, और उसके बाद में तुम्हारे पुत्र राजगद्दी पर बैठेंगे। और मैं तुम्हें वरदान देता हूं ध्रुव कि हालांकि इतना भौतिक भोग मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, लेकिन तुम पाप के मार्ग में कभी नहीं जाओगे, और मृत्यु के समय तुम मेरा स्मरण करोगे और मेरे पास आओगे। तो देखिए ध्रुव महाराज कितने भाग्यशाली थे कि भगवान ने स्वयं उनको गारंटी दी कि अंत काल में तुम मेरा स्मरण करोगे। तो ध्रुव महाराज ने धन्यवाद दिया भगवान को, हाथ जोड़े। भगवान फिर वैकुंठ लोक वापस गरुड़ के ऊपर सवार होकर लौट के चले गए। उधर ध्रुव महाराज को पता नहीं चला कि अब क्या करना चाहिए। अपने सौभाग्य के ऊपर बार बार चिंतन मनन करते रहे कि मेरा कितना सौभाग्य है कि स्वयं भगवान श्री हरि मेरे सामने प्रकट हुए। और उसके बाद में ध्रुव महाराज अपने आप को धिक्कारने लगे, सोचने लगे कि मैं कितना मूर्ख हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास हूं जिसने एक सम्राट, विश्व सम्राट को प्रसन्न किया है, और विश्व सम्राट ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, और मैंने जाकर दो चार दाने अनाज के मांगे हैं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं। मैं भगवान के पास गया, वो मुझे वैकुंठ ले जाने के लिए आए थे और ले भी जा सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस ब्रह्मांड का राजपद मांगा। तो मैं कितना मूर्ख हूं, मेरी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो चुकी है। मुझे ये नहीं मालूम था कि क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए। ध्रुव महाराज सोचने लगे, क्योंकि देवताओं ने देखा कि भगवान मुझे वैकुंठ ले जाने के लिए आए थे, शायद उन्होंने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। क्यों? क्योंकि देवता लोग जानते हैं कि जब उनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे उनको भी पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। उनको देवलोक की प्राप्ति हुई है इस वजह से क्योंकि उन्होंने मनुष्य जन्म में बहुत सारे पुण्य किए थे, और उस पुण्यों के इन पुण्यों के बल पर उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। लेकिन जैसे जैसे स्वर्ग लोक में वो भोग करते हैं तो वो पुण्य क्षीण हो जाते हैं, और जैसे पुण्य क्षीण हो जाते हैं उनका पतन फिर से हो जाता है। तो देवता लोग जानते होंगे कि उनका पतन होना है, और उन्होंने सोचा कि हमारा पतन होगा स्वर्ग से और ध्रुव महाराज पृथ्वी से वैकुंठ चले जाएंगे, तो चलो ध्रुव महाराज को भ्रमित कर देते हैं, ध्रुव महाराज की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। तो ध्रुव महाराज ऐसे ही अपने आप को जब धिक्कार रहे थे तो ऐसे सोच रहे हैं कि अवश्य ऐसे देवताओं ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट की होगी, इसलिए मैंने इस प्रकार का वरदान भगवान से मांगा। हालांकि मैं सीधा जा सकता था, वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसे सब मांग लिया है। और मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे वरदान नहीं बल्कि दंड दिया है। क्यों? वो मुझे वैकुंठ ले जा सकते थे अभी के अभी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा 36,000 साल यहां राज करो, बड़े राजा बनो, बहुत भोग करो, और बाद में मेरे पास लौट कर आना। तो ये मेरे लिए दंड ही है कि 36,000 वर्ष मुझे यहां भौतिक संसार में और रहना पड़ेगा। अगर चाहते तो भगवान मुझे इसी क्षण ले जा सकते थे। तो खैर, ऐसा सोचते सोचते अपने आप को धिक्कारते हुए ध्रुव महाराज ने सोचा कि चलो अभी वापस लौट कर जाना चाहिए। उधर एक दूत ने आकर खबर पहुंचाई राजा उत्तानपाद को, जो कि ध्रुव महाराज के पिता थे, कि आपका पुत्र ध्रुव अभी वापस लौट के आ रहा है। उसने भगवान की प्राप्ति कर ली है, बड़ा तेजस्वी हुआ है वो, और इस समय वो आने की तैयारी में है। महाराज उत्तानपाद के खुशी की सीमा नहीं रही, तुरंत उन्होंने एक उत्सव मनाना आरंभ किया सारे राज्य में। अपने मंत्रियों को, उपदेशकों को, अपने रानियों को, सबको बुलाया, सारे प्रजा में बात फैल गई कि ध्रुव महाराज अभी राज में लौट कर आ रहे हैं। कई साल 6 महीने पहले जब ध्रुव महाराज घर छोड़कर चले गए थे तो उत्तानपाद महाराज बड़े उदास थे। जब नारद मुनि ध्रुव महाराज को उपदेश दे रहे थे और ध्रुव महाराज अंदर जंगल में चले गए, तो उस समय नारद मुनि सीधे जंगल से और उत्तानपाद महाराज के पास आए थे, पहले 6 महीने पहले, और उन्होंने महाराज से कहा, अरे महाराज, आप बहुत उदास लग रहे हैं, बहुत निराश लग रहे हैं, क्या अड़चन है, क्या कारण है कि आपके राज कारोबार में संभालने में आपको कोई तकलीफ हो रही है? तो उत्तानपाद राजा कहने लगे कि हे नारद मुनि, मेरी बहुत बड़ी गलती हुई, मेरे दूसरे रानी सुरुचि से मैं इतना आसक्त हूं कि मैंने मेरे बड़े पुत्र ध्रुव, जब वो मेरे गोदी में आना चाहता था, सुरुचि महारानी को प्रसन्न करने के लिए मैंने ध्रुव महाराज को स्वीकार नहीं किया, मैंने उसको नकार दिया, उसका तिरस्कार किया, और उस वजह से ये चोट उसके हृदय में इतनी पहुंची कि वो घर छोड़कर जंगल में चला गया है तपस्या करने के लिए। अब तो जंगल में उसकी क्या दशा होगी वो तो भगवान ही जाने। जंगल में कितने कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, शायद बेचारा इतना छोटा सा कोमल बालक इतना नाजुक है, उसने कभी राजमहल के बाहर असुविधाओं का अनुभव नहीं किया है, और अभी भूखा प्यासा थका हुआ इधर उधर जंगल में भटक भटक के शायद कहीं ठंडे जमीन पर सो गया होगा कांटों के ऊपर, और शायद जहरीले जानवरों ने आकर खा भी लिया होगा उसे। तो मैं इस वजह से इतना चिंतित हूँ, रात को नींद नहीं आती, दिन में राज के ऊपर मेरा ध्यान नहीं जाता, पता नहीं चलता है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकता। तो उस समय नारद मुनि ने बोला था, कह दिया था महाराज उत्तानपाद से कि हे महाराज, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, क्योंकि आपका लड़का भगवान श्री हरि के संरक्षण में आनंद की अवस्था में है, स्वयं भगवान आके उसकी सुरक्षा करने वाले हैं, बिल्कुल आप इसके बारे में चिंता नहीं कीजिए। और ये जान लीजिए कि तपस्या करने के पश्चात स्वयं वो भगवान की प्राप्ति करेगा, और इसी क्षण से ही ध्रुव महाराज का यश सारे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में फैल गया है, और इतना ही नहीं आपका यश भी फैल गया है क्योंकि आप उनके पिता हैं। तो ध्रुव के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। जब ये उत्तानपाद महाराज ने सुना तो थोड़ा बहुत उनका हृदय शांत हो गया, उनका दुख मिट गया, लेकिन फिर भी क्योंकि ध्रुव उनके साथ में नहीं था, स्वाभाविक है पिता होने के नाते थोड़े विचलित तो थे ही, लेकिन फिर भी नारद मुनि के अंदर नारद मुनि में उनको पूर्ण श्रद्धा थी। इसलिए जब वो दूत संदेश लेकर आया कि ध्रुव महाराज अभी लौट कर आ रहे हैं, तो बड़े खुशी से उस दूत को उत्तानपाद महाराज ने बहुत सा धन दे दिया, गहने और रत्न इत्यादि दे दिए, और फिर स्वयं हाथी घोड़े पालकी इत्यादि लेकर और नाना प्रकार के वाद्य इनको लेकर वो जंगल की ओर चल पड़े ध्रुव महाराज का स्वागत करने के लिए। और जैसे ही वो शहर के बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज जंगल से बाहर आ रहे थे, तो दौड़ते हुए उत्तानपाद महाराज ध्रुव महाराज के पास में गए, आलिंगन किया और अपने आंसुओं से ध्रुव महाराज का अभिषेक किया। ध्रुव महाराज बड़े खुश थे, और जैसे ही उत्तानपाद महाराज ने ध्रुव महाराज के शरीर का स्पर्श किया, उसी समय उत्तानपाद महाराज को समझ में आया कि ये मेरा बच्चा साधारण नहीं है, अवश्य इसने भगवान का साक्षात्कार किया है, क्योंकि इसके शरीर का स्पर्श करने मात्र से ही मेरे भी अंदर ऐसे एक दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है जिसका अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया है, तो अवश्य भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मेरे बच्चे के ऊपर हुई है। और फिर उधर सुनीति देवी, जैसे कि एक महान वैष्णव की माता के लिए उचित है, उन्होंने सुरुचि देवी और उत्तम को भी साथ में अपने पालकी में ले गई थी। सुनीति देवी ने यह नहीं सोचा कि सुरुचि देवी की वजह से मेरे बच्चे को के प्रति कितना अपमान हुआ है और ये सब कठिनाई केवल इसकी वजह से हुई है, नहीं, सुनीति देवी ने अपने हृदय में द्वेष भावना नहीं रखी, बल्कि प्रेम से अपने सपत्नी को अपने साथ में पालकी में ले आई। और जब ध्रुव महाराज ने सुरुचि को देखा तो जाकर उन्होंने प्रणाम किया, ध्रुव महाराज ने भी द्वेष भावना नहीं रखी। पहले जब अपने आप को धिक्कार रहे थे, ध्रुव महाराज सोच रहे थे कि मैं तो इन द्वंद्वों में फंसा हुआ हूं, और मैं मेरे भाई उत्तम और मेरी विमाता सुरुचि को मेरा शत्रु समझ रहा था, लेकिन ये सारे द्वंद्व हैं, कौन हमारे शत्रु हैं कौन मित्र हैं, हम सब भगवान के अंश हैं। तो इस समय ध्रुव महाराज के हृदय में भी सुरुचि देवी के प्रति भी केवल प्रेम की भावना ही थी। तो इस प्रकार से सुरुचि देवी ने भी आलिंगन किया ध्रुव महाराज को, और फिर उत्तम से भी आलिंगन किया। उसके बाद में जब सुनीति देवी सामने आई तो वात्सल्य भावना मातृभावना जो है इतने उभर आई उनके हृदय में कि उन्होंने आलिंगन किया। सुनीति देवी भी ध्रुव महाराज के अनुपस्थिति के समय सदैव सतत 24 घंटे भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करती थी कि वो ध्रुव की सुरक्षा करे, की रक्षा करे, और इसलिए वो भी शुद्ध भक्त बन गई थी, क्योंकि दिन रात भगवान का चिंतन मनन गुणगान करती रहती थी। और इस प्रकार से महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव और उत्तम दोनों को एक हाथी के ऊपर बिठाया और फिर सब वापस राजधानी में लौटकर चले आए। उधर सारे नागरिक ध्रुव महाराज का स्वागत करने के लिए खड़े थे। जैसे जैसे वो सड़क से जाते तो ऊपर से फूलों की वर्षा होती, अक्षता बरसाते लोग, और थोड़े थोड़े फूल या फल इत्यादि जो भी शुभ वस्तुएं हैं वो सब बरसाने लगते। सारा शहर सुशोभित था, नाना प्रकार के अलंकारों से, मोतियों की माला, फूलों की माला, नाना प्रकार के रंग बिरंगे ध्वज और फिर आम के पत्ते, बड़े सुंदर ढंग से सारा शहर जो है सजाया हुआ था लोगों ने। और इस प्रकार से बड़े धूमधाम से ध्रुव महाराज का स्वागत हुआ। ध्रुव महाराज उत्तानपाद महाराज के राजमहल में फिर से आ गए, जो कि बहुत ऐश्वर्यशाली था। इतना ऐश्वर्यशाली कि इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। यो सारे राजमहल कीमती कीमती हीरों से, रत्नों से सजाया हुआ था, और इसके अंदर इतने सुंदर सुंदर कुंड थे जिसमें कि नाना प्रकार के पक्षी, चक्रवाक, क्रौंच और हंस इत्यादि वहां रमण कर रहे थे। जो सीढ़ियां थी वो भी सुंदर और महंगे रत्नों से बनाए हुए थे, और जो भी बैठने के लिए कुर्सियां, टेबल वगैरह थी, सब शुद्ध सोने के बनाए हुए थे। तो ऐसे ऐश्वर्य के वातावरण में ध्रुव महाराज वापस आए, और इस प्रकार से थोड़ा समय बीत गया। महाराज उत्तानपाद की खुशी की सीमा नहीं रही, वो लाड प्यार करते रहे ध्रुव से। और जब उनकी उम्र बढ़ गई, उन्होंने सोचा कि अभी मुझे वानप्रस्थ लेना चाहिए। वो जंगल में चले गए, लेकिन उसके पहले अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा किया और ध्रुव महाराज को राजगद्दी पर बिठाया, राज अभिषेक किया और फिर वो चले गए जंगल में, जैसे कि राज ऋषियों के प्रथा थी। ध्रुव महाराज जब राजगद्दी पर बैठे, थोड़े समय बाद उन्होंने विवाह किए। वायुदेव की एक पुत्री थी जिनका नाम था इला। इला से विवाह किया ध्रुव महाराज ने, और उनकी सुंदर पुत्री हुई और एक पुत्र भी हुआ। पुत्र का नाम था उत्कल। उत्कल जन्म से ही आत्म साक्षात्कारी बच्चा था। शरीर और आत्मा के भीतर जो अंतर है वो अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने पागल होने का एक नाटक किया ताकि उन्हें राजगति पर न बिठाया जाए, क्योंकि वो संसारी चीजों में पढ़ना नहीं चाहते थे, राजा नहीं बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग उन्हें पागल कहें ताकि वो आराम से अपनी भक्ति कर सके। तो ध्रुव महाराज ने एक दूसरे विवाह कर ली प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी से। उनके दो पुत्र हुए, एक का नाम था कल्प और दूसरा वत्सर। आगे चल के वत्सर राजा बने, हालांकि वो छोटे थे उत्कल से, क्योंकि उत्कल पागल बनने का नाटक कर रहे थे और कोई समझ नहीं पाए कि ये नाटक कर रहे हैं, इसलिए वत्सर को राजगद्दी पर बिठाया गया। लेकिन ये बहुत बाद में हुआ। इस दौरान ध्रुव महाराज 36,000 साल राज तो कर रहे थे। फिर एक बार ऐसे हुआ कि जब ध्रुव महाराज के छोटे भाई उत्तम शिकार करने गए थे, जैसे कि भविष्यवाणी की थी भगवान ने, तो उनको उनका सामना एक यक्ष से हुआ और यक्ष ने उनको मार दिया। और सुरुचि देवी उनका पीछा करते करते उनको खोजने के लिए गई जंगल में। जंगल में आग लग गई और सुरुचि देवी का भी देहांत हो गया। जब ध्रुव महाराज, जो कि अपने भाई उत्तम से बहुत प्रेम करते थे, उनको पता चला कि यक्षों ने मेरे भाई को मार डाला है, तो बहुत क्रोध आया। अपने अस्त्र शस्त्र धारण करके वो जंगल में चल पड़े, और जंगल में जाकर सीधे वो यक्ष लोक में गए, जो कि हिमालय में बहुत ऊंचे चट्टानों में है। और जैसे ही वो वहां पर बाहर गए, अलकापुरी उनका राजधानी है, और अलकापुरी के बाहर आकर बड़े जोर से अपना शंख बजाया। और जैसे ही ध्रुव महाराज ने शंख बजाया तो यक्षों के पत्नियों के हृदय टूट गई डर के मारे, और ये सारे यक्ष बाहर आए अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, और फिर धुआंधार युद्ध हुआ। और ध्रुव महाराज ने इतनी शूर वीरता से युद्ध किया कि हालांकि बहुत सारे यक्ष मारे जा रहे थे, किंतु अन्य यक्षों ने ध्रुव महाराज की प्रशंसा की, गुणगान किया कि देखो कितने शूर वीरता से युद्ध कर रहे हैं। और बाद में 130,000 यक्ष सामना करने आए युद्ध में ध्रुव महाराज का। और ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे एक पहाड़ के ऊपर जब मूसलधार वर्षा होती है, उसी तरह से ध्रुव महाराज के ऊपर मूसलधार जो है वो अस्त्र शस्त्र गिर रहे थे। और थोड़े समय के लिए जो सिद्ध चारण इत्यादि देवलोक स्वर्गलोक से जो प्राणी जो निवासी थे वो आकाश में अपने वाहनों में घूम रहे थे, इस युद्ध को देख रहे थे, उन्होंने हाहाकार मचा दिया, अरे हाय हाय अभी स्वयंभू मनु का जो पोता है वो नष्ट हो गया। लेकिन अचानक जिस प्रकार से घने बादलों के बीच से फिर से सूरज प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार से इन अस्त्र शस्त्रों के आवरण के भीतर से फिर से ध्रुव महाराज अपने रथ पर सवार होकर बाहर आए और फिर से युद्ध करना आरंभ किया, और लाखों की संख्या में यक्षों का वध करना शुरू कर दिया। और जब सारे यक्ष खत्म हो गए तो ध्रुव महाराज सोच रहे थे कि चलो अब मैं अलकापुरी में प्रवेश कर लूं। लेकिन उस समय सोचने लगे कि यक्ष जो हैं योग सिद्धि में बड़े दक्ष हैं, अभी कुछ चाल उनकी होगी अवश्य। और जैसे ही वो इस तरह सोच रहे थे, तुरंत आकाश से बहुत भयंकर गड़गड़ाहट हुई, भीषण आवाजें होने लगी, एक जगह से एक पहाड़ ऐसे लग रहा था कि कोई पहाड़ के पहाड़ गिर रहे हैं, दूसरी जगह से ऐसे लग रहा था कि सारा विशाल सागर ही ऊपर आ रहा है, और नाना प्रकार के मृत शरीर शव आ रहे थे, नाना प्रकार के गंदी गंदी चीजों की वर्षा हो रही थी। ये सारी चीजें यक्षों की योग सिद्धि से हो रहे थे। और ध्रुव महाराज थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गए, क्या किया जाए। उस समय भगवान श्री हरि ने को अनुकंपा की भावना हुई, उन्होंने ऋषि मुनियों को भेजा सांत्वना देने के लिए ध्रुव महाराज को। तो ऋषि मुनि ध्रुव महाराज के पास आए और कहने लगे कि हे ध्रुव, चिंता नहीं करो, तुम सदैव भगवान श्री नारायण के संरक्षण में हो। जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति को पार कर सकता है, तो इसलिए भगवान के नाम का आश्रय लो और चिंता मुक्त हो जाओ। ये सब वास्तव में हमारे लिए भी उपदेश है। भगवान बताते हैं, मत चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति। गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थिति सर्व दुर्गाणि अगर आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, मत चित्त। अगर हमने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चिंतन मनन किया, उनका स्मरण किया, उनके नाम का उच्चारण किया भक्ति भाव से, तो कठिन से कठिन परिस्थितियों के भी पार हम हो सकते हैं भगवान की कृपा से। मत प्रसादात तरिष्यसि, कि हे कृष्ण अगर तुम मेरे चेतना में रहोगे, कृष्ण भावना में रहोगे, तो कठिन जब परिस्थितियां आ जाएंगी तो मेरी कृपा से तो उनके पार हो जाओगे। ऐसा कौन व्यक्ति है संसार में जिसके जीवन में कठिन परिस्थितियां नहीं आती हैं? कोई नहीं, सबके जीवन में विकट परिस्थितियां आती रहती हैं। इसलिए भक्त को चाहिए, बल्कि किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि हाय हाय करके बैठने के बजाय, रोने धोने के बजाय, अपना समय, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपना चित्त केवल भगवान में केंद्रित करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, समय केवल शोक करने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ध्रुव महाराज ने ऐसे ही किया, उन्होंने आचमन किया जल का स्पर्श करके, और फिर नारायण ऋषि ने प्रदान किया हुआ एक अस्त्र था, नारायण अस्त्र, उसको हाथ में लिया। और उस समय नारायण अस्त्र से हजारों हजारों स्वर्ण के तीर निकले तेज गति से, और जो भी लाखों लाखों जो यक्ष थे एक के बाद एक उनके सर कटने लगे, किसी के पैर कटने लगे, किसी के हाथ कटने लगे, ऐसे सब इन यक्षों का वध हो गया। और ये दृश्य देखा जब स्वयंभू मनु ने, जो ऊपर से अपने लोक से देख रहे थे, जल्दी जल्दी से ध्रुव महाराज के पास आए और कहने लगे, हे ध्रुव, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम एक शुद्ध भक्त हो भगवान के, भगवान श्री हरि स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हुए थे तुम्हें कृपा प्रदान करने के लिए, और तुमने तो सिद्ध कर दिया है कि तुम अपने भाई से कितना प्रेम करते थे। अब और इतने सारे जो निर्दोष यक्ष हैं उनका वध करने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे भाई का वध को मारा था केवल एक यक्ष ने, तो उस एक यक्ष की गलती के लिए तुम इतने लाखों लाखों यक्षों को क्यों मार रहे हो? तो इस प्रकार से तुम्हें द्वेष करना उचित नहीं है। भगवान श्री हरि के भक्तों को चाहिए कि हमेशा उनके हृदय में वो दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम, मैत्री की भावना रखें। तो जब स्वयंभू मनु ने ऐसे कहा तो ध्रुव महाराज का क्रोध फिर भी कम नहीं हुआ था। तो स्वयंभू मनु आगे कहने लगे कि हे ध्रुव, अपने क्रोध को वश में करो। ये जान लो कि वास्तव में ये संसार तीन गुणों के अधीन है, और भगवान ये तीन गुणों के स्वामी हैं, और ये पंच महाभूतों का घटन और विकास जो भी होता है ये केवल भगवान के निर्देशन में होता है। तो ये जान लो कि वास्तव में किसी की मृत्यु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करता है, ये केवल किस्मत से होता है, भाग्य से होता है, और भाग्य तीन गुणों के अधीन है और तीन गुण भगवान के अधीन है। इसे तुम्हारे भाई की जो मृत्यु का कारण अंततः देखा जाए तो भगवान है इसका कारण। वैसे भगवान ही सब चीजों को मारते हैं, सब व्यक्तियों को मारते हैं और नहीं भी मारते हैं, इसलिए तुम्हें जानना चाहिए कि अंततः भगवान हरि की इच्छा से कोई भी चीज नहीं हो सकता। तो अगर तुम्हारे भाई की मृत्यु हुई है तो ये भी भगवान की इच्छा से ही हुई है, उनकी अनुमति से हुई है। इस प्रकार से तुम जाओ, ऐसे धारणा से तुम कुबेर की शरण में जाओ, क्योंकि यक्षों के राजा कुबेर हैं, और कुबेर जी शिव जी के भाई हैं, और अगर कुबेर क्रोधित हुए तो हमारे सारे वंश को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जाओ अलकापुरी में और कुबेर की क्षमा याचना करना। तो स्वयंभू मनु की इन कथाओं को सुन, इन वचनों को सुनकर ध्रुव महाराज का क्रोध खत्म हो गया, शांत हो गए, अस्त्र शस्त्र उन्हें नीचे रख दिए। और जब कुबेर ने देखा कि ध्रुव महाराज ने अब युद्ध करना बंद कर दिया है तो तुरंत वो ध्रुव के सामने आए और कहने लगे, ध्रुव महाराज, तुमने अपनी शत्रुता को त्याग कर दिया है, जिसे त्याग करना बहुत कठिन है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। तुम हर दृष्टि से नाना प्रकार के वरदान स्वीकार करने के लिए योग्य हो। कहो, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए? कोई भी वरदान मैं देने के लिए तुम्हें तैयार हूं। मैं धन का देव हूं, तो कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति के सामने अगर कुबेर आए तो व्यक्ति क्या मांगेगा? संसार का व्यक्ति धन ही तो मांगेगा, क्योंकि कुबेर तो धन के देवता है। लेकिन ध्रुव महाराज ने क्या कहा? ध्रुव महाराज ने कहा कि हे कुबेर जी, मेरे अंदर केवल एक ही इच्छा है, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं कभी भी भगवान श्री कृष्ण को भूलू नहीं, और सदैव भगवान श्री हरि के चरण कमलों में आश्रित रहूं और उनकी सेवा में स्थित रहूं, कभी मैं भगवान श्री कृष्ण से विमुख नहीं हो जाऊं, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो कुबेर जी ने यह सुनकर ये बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, जैसे तुम्हारी इच्छा। निश्चित रूप से तुम भगवान श्री हरि का स्मरण नित्य कर पाओगे। इस प्रकार से कुबेर वहां से चले गए, ध्रुव महाराज अपने राज्य में लौटकर आए, और जिस प्रकार से भगवान ने वरदान दिया था ऊंचे राजपद की प्राप्ति करने के बाद उस प्रकार का भोग भी करते थे और फिर नाना प्रकार के तपस्या और धार्मिक क्रियाएं, अनुष्ठान, यज्ञ भी किया करते थे। इस प्रकार से काफी समय बीत गया और जब उम्र हो गई उनकी, 36,000 वर्ष नजदीक आ गए, तो उन्होंने सोचा कि अभी मुझे वानप्रस्थ लेना चाहिए और अपने सारे कुटुंब को, अपने धन को, अपने राज्य को, इस सारे ब्रह्मांड को एक मिथ्या, एक भ्रम समझकर आसानी से त्याग किया और बद्रिक आश्रम तपस्या के लिए चले गए। देखिए, राजा जो होते थे, ये राज ऋषि, उनके पास इतना धन था, लेकिन इतने आसानी से वो कैसे इसको त्याग कर सकते थे? हम हमारे थोड़े बहुत धन को त्यागने के लिए हमें इतना अफसोस होता है, इतना हृदय पर चोट पहुंचता है कि अरे अरे, हमें इतना धन देना है। लेकिन ध्रुव महाराज जैसे राज ऋषि, जिनके पास इतना पैसा था, इतने आसानी से छोड़कर चले गए, कैसे संभव है? क्योंकि बचपन से ही उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। ये प्रथा हुआ करती थी कि राज बनने के योग्य हो जाते थे। तो इस प्रकार से भगवान श्री हरि ने ध्रुव महाराज को इतना सा धन दिया, भोग का मौका दिया। क्यों? क्या भगवान जानते नहीं थे, या भगवान ने क्या सोचा नहीं, ये बहुत खतरे का मामला है मेरे भक्त के लिए, मैं अगर बहुत ज्यादा धन संपत्ति दे दूंगा तो शायद मेरे भक्त का पतन हो सकता है। यस्याहम अनुघ्नामि हरिष्य तद्धनम शनैः। श्रीमद् भागवत की 11वें स्कंद में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि जब मैं किसी भक्त के ऊपर विशेष कृपा करता हूं तो मैं धीरे धीरे से उसका सब कुछ छीन लेता हूं। हरिष्य शनै, शनै शनै, धीरे धीरे उसका मैं छीन लेता हूं, इंस्टॉलमेंट्स में। पहला इंस्टॉलमेंट ले लेता हूं थोड़ा धन, फिर बाकी धन, फिर जो भी कुछ है उसे कंगाल करके छोड़ता हूं, ताकि वो समझ जाए कि मेरे सिवाय और कोई धन उसके पास नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। तो ऐसे पीड़ित अवस्था में, दुखी अवस्था में मेरे शरण में आने के बजाय उसके लिए कोई मार्ग नहीं रहेगा। तो जब भगवान ऐसे अपने भक्तों से करते हैं, तो फिर ध्रुव महाराज के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, इतना धन उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि वो जानते थे कि ध्रुव महाराज का पतन नहीं होगा, क्योंकि वो जानते थे कि ध्रुव महाराज उस धन का उपयोग अच्छी तरह से, सही ढंग से उपयोग करने वाले हैं। सही ढंग से उपयोग करने का मतलब क्या है? केवल भगवान की सेवा में लगाना। अगर भगवान सोचेंगे कि मैंने अगर इस भक्त को पैसा दिया ज्यादा और ये इस धन का दुरुपयोग करके इंद्र तृप्ति में इस्तेमाल करने वाले हैं, तो भगवान उस धन को छीन लेंगे। लेकिन जब भगवान को विश्वास होता है कि मेरे धन का उपयोग, मेरे लक्ष्मी का उपयोग ये केवल मेरे सेवा में करने वाले हैं, तो भगवान ऐसे भक्तों को ज्यादा धन भी दे सकते हैं। जैसे सुदामा जी, सुदामा जी को धन बिल्कुल नहीं चाहिए था, लेकिन जबरदस्ती छप्पर फाड़ के उन्होंने दे दिया, इतना सा धन दे दिया कि सुदामा जब लौट कर आए तो पहचान नहीं पाए अपने घर को, अपने पत्नी को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि सुदामा बिल्कुल धन से, संपत्ति से आसक्त नहीं है। उसी प्रकार से ध्रुव महाराज बिल्कुल निरासक्त हो गए थे भगवान का दर्शन करने के पश्चात। जब भगवान देखते हैं कि कोई भक्त बिल्कुल धन नहीं चाहता है, बिल्कुल निरासक्त है, तनिक मात्र भी उसके हृदय के अंदर धन के प्रति आसक्ति या लगाव नहीं है, तब भगवान उसे ढेर सारे पैसे दे देते हैं। जब भगवान देखते हैं कि इसके अंदर पैसे प्राप्त करने की बहुत कामना है, तो हो सकता है कि भगवान देने के बजाय ले भी सकते हैं, हो सकता है दे भी दें, ले ले, दे दें, भगवान का लेन देन कोई समझ नहीं सकता। संसार में भी, व्यवसाय में लेन देन का मामला इतना सब कभी कभी कोई हो जाता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन भगवान का लेन देन तो समझना बहुत मुश्किल है। कब भगवान लेंगे, कब भगवान देंगे? अगर भगवान देना चाहें तो उनके पास चार भुजाएं हैं और बहुत बड़े बड़े भुजाएं, देते हैं तो इतना दे सकते हैं, हमारे लेने के लिए केवल दो हाथ हैं, कितना ले सकते हैं हम? और अगर वो लेना चाहे अपने चार हाथों से, अपने धन का संरक्षण करने के लिए हैं हमारे दो छोटे छोटे हाथ, कितना संरक्षण कर पाएंगे? तो भगवान का लेन देन ये समझना बहुत कठिन है। लेकिन जो व्यक्ति अपने धन से, संसार से बिल्कुल निरासक्त हो जाते हैं, भगवान सोचते हैं ठीक है, यही सही व्यक्ति है, यही मेरे धन को संभाल सकता है। और इस प्रकार से भगवान सुदामा और ध्रुव जैसे भक्तों को बहुत ऐश्वर्य देते हैं। और अगर भगवान देखेंगे कि ये ऐश्वर्य, ये मान सम्मान, ये यश मेरे भक्त के सर में चढ़ गया है और उसका सर थोड़ा फूलने लग रहा है, तो भगवान क्या करते हैं, थोड़े उस फूले हुए शरीर को कम करने के लिए एक सुई टोक देते हैं, फिर से भक्त नीचे आ जाता है। तो यह है भगवान की कृपा, भगवान ऐसे अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाते रहते हैं। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज ने यह सिद्ध कर दिखाया कि वास्तव में वो बिल्कुल निरासक्त थे। और फिर बद्रिकाश्रम चले गए और वहां पर वो भगवान के ऊपर ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। भगवान का अर्चा विग्रह उन्होंने मिट्टी से बनाया और उनकी उपासना, आराधना, सेवा करने लगे, साथ साथ भगवान के नाम का जप करने लगे। और अंततः थोड़े समय के बाद में एक दिन जब वो अपने तपस्या में मग्न थे, उन्होंने एक बहुत अद्भुत दृश्य देखा कि आकाश में बहुत दूर से एक सुंदर तेजस्वी विमान उनकी ओर आ रहा है। और देखते देखते वो विमान तेजी से आया ध्रुव महाराज के पास जमीन के ऊपर, और फिर उसमें से दो बड़े तेजस्वी सुंदर व्यक्ति बाहर आए। वो थे विष्णुदूत, बिल्कुल विष्णु की तरह दिख रहे थे, चार भुजाएं, केवल कौस्तुभ और श्रीवत्स के बिना थे, अन्यथा वो बिल्कुल विष्णु की तरह लग रहे थे। जब वो आए नीचे तो फिर ध्रुव महाराज को पता नहीं चला कैसे स्वागत करना चाहिए, क्योंकि बहुत आश्चर्यचकित हो गए। केवल अपने दो हाथों को जोड़ा और सर झुकाया, नम्रता से उनको प्रणाम किया। तो ऐसे साधारण एक स्वागत से ये दो विष्णु दूत, जिनका नाम था नंद और सुनंद, जो उनके द्वारपाल हैं वैकुंठ के, वो आए और उन्होंने कहा कि हे ध्रुव, ये जान लो कि हमारे स्वामी श्री हरि आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। आपने उनको जब आप केवल 5 वर्ष के थे उनको प्रसन्न किया था, और उन्होंने वरदान दिया था आपको कि 36,000 वर्ष आप राज करोगे और फिर आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो आइए, हम आपको वैकुंठ लोक ले जाना चाहते हैं। आप ये जान लो कि आज तक इतिहास में आपके पूर्वजों में से या किसी और लोगों में से भी किसी ने भी इस लोक की प्राप्ति नहीं की है, क्योंकि ये स्वयं भगवान का लोक है श्वेत द्वीप, और उस द्वीप की प्राप्ति आपको होने जा रहा है। तो आइए, हमारे साथ आइए। उस समय ध्रुव महाराज ने हाथ जोड़ा और फिर स्नान कर लिया, दूसरे कपड़े पहने, थोड़े उनके और क्रियाएं थे, आध्यात्मिक क्रियाएं थे, वो किए, और जो पास में जो ऋषि मुनि रहते थे उनको नमस्कार किया। और जैसे जैसे ध्रुव महाराज ये सब कर रहे थे तो इनका शरीर हर क्षण ज्यादा से ज्यादा तेजस्वी बनते जा रहा था, और स्वर्ण के पिघले हुए सोने के बराबर उनका वर्ण बन गया। और फिर वो चढ़े उस विमान में, और जैसे ही वो चढ़ने जा रहे थे तो मूर्तिमान मृत्यु, श्रीमान मृत्यु, वो सामने आए। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे कि अरे, मेरा सामना करने बगैर कोई यहां संसार से कैसे बाहर जा सकता है? मैं हरेक व्यक्ति को पहले वश में कर लेता हूं, मेरा शिकार बन जाता है, फिर उसको कहां जाना है वो जा सकता है, चाहे वो स्वर्ग में जाए, चाहे वो नरक में जाए या वैकुंठ में जाए, लेकिन पहले मेरा शिकार होना चाहिए उसको, श्रीमान मृत्यु ऐसे सोच रहे थे। श्रीमान मृत्यु वहां आए जल्दी, अरे अरे कहां जा रहे हो? तो ध्रुव महाराज ने क्या किया, बिल्कुल परवाह नहीं की मूर्तिमान मृत्यु की, मृत्यु के पैर के ऊपर, सर के ऊपर पैर रख के सीधा उस विमान में चढ़ गए और मृत्यु कुछ कर नहीं पाए। दूसरे शब्दों में ध्रुव महाराज को मृत्यु भी स्पर्श नहीं कर पाया और उसी शरीर में, जिस शरीर में वो इस भौतिक संसार में थे, उसी शरीर में वो उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। और जैसे ध्रुव महाराज अंदर बैठे और विमान उड़ने वाली थी, उस समय ध्रुव महाराज ने कहा कि मैं मेरी माता को भी लेकर जाना चाहता हूं, मैं अकेला नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो मैं शायद भगवान श्री नारायण को प्रसन्न करने के लिए नहीं आता, उनकी मार्गदर्शन से ही मैं ये भक्ति के मार्ग में आया। तो उनके मन की बात समझ गए नंद और सुनंद, चुपचाप उन्होंने केवल अपने हाथ उठाकर उंगलियों से इशारा किया आकाश में। ध्रुव महाराज ने उस ओर देखा तो क्या देखा कि वहां और एक सुंदर उसी तरह का विमान उड़ रहा है और उसमें भी दो विष्णुदूत हैं और पीछे की ओर सुनीति देवी उनकी माता बैठी हुई है। तो नंद सुनंद ने कहा, हे ध्रुव चिंता नहीं करो, आपके पहले आपको माता को हम बिठा चुके हैं और वो वैकुंठ की ओर जा रही है, शायद तुमसे पहले भी पहुंच जाएंगे। इस तरह से ध्रुव बड़े प्रसन्न हुए और फिर नंद और सुनंद ध्रुव महाराज को वैकुंठ लोक की ओर ले गए और उधर आगे चल के वत्सर राजगद्दी पर बैठ गए। तो मैत्री मुनि विदुर को ये कथा सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत में और कहने लगे कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसकी आयु बढ़ जाएगी, उसको धन मिल जाएगा और राजपद मिल सकता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है श्रद्धा से अगर इस कथा का श्रवण कीर्तन करेगा तो उसे ध्रुव लोक की प्राप्ति भी हो सकती है, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी, उसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगी और जन्म मृत्यु चक्कर से छुटकारा होकर वो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अगर आपने भी ध्यान से यह कथा सुना है तो आपको भी वैकुंठ लोक जाना है, लेकिन तैयारी थोड़ी और करनी है। और इस प्रकार से ऐसे कथाएं श्रीमद् भागवत के भगवान श्री कृष्ण के बारे में और उनके शुद्ध भक्तों के बारे में अगर हम सुनते रहेंगे तो हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता रहेगा और जैसे जैसे अनर्थ नष्ट होते जाएंगे भक्ति का विकास हमारे हृदय में होता रहेगा और फिर अंततः प्राण त्यागने के समय हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे और फिर मृत्यु के बाद हम भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आपके कोई प्रश्न है? इसके साथ ध्रुव महाराज की कथा समाप्त हो गई। आपके कोई प्रश्न टीका टिप्पणी इत्यादि हैं तो आप पूछ सकते हैं।
ने कहा कि ध्रुव महाराज जी ने मृत्यु के सर पर अपने पांव रख के उस वैकुंठ से आए विमान के चढ़ गए और उसी भौतिक शरीर में ही वो वैकुंठ के और चले गए। क्या इसके अर्थ है कि जो ध्रुव महाराज ने पहले ही बहुत आध्यात्मिक शरीर में ही आए हुए थे?
नहीं, इसका अर्थ ये है कि क्योंकि उन्होंने भगवान श्री हरि का भजन किया था, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बन गए थे, इसलिए उनका शरीर आध्यात्मिक बन चुका था। भौतिक और आध्यात्मिक में अंतर क्या है? जब कोई चीज भगवान से अलग हो जाता है उसको हम भौतिक कहते हैं, जब किसी चीज को भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो वो आध्यात्मिक हो जाता है। जैसे ये माइक्रोफोन है, ये माइक है, ये आध्यात्मिक अब है क्योंकि इसका प्रयोग भगवान की कथा के लिए किया जा रहा है। अगर इसमें से कोई सिनेमा के गाने कोई गाए तो फिर ये भौतिक हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ध्रुव महाराज ने अपने सारी इंद्रियां, अपना प्राण, अपना शरीर, मन, बुद्धि, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के 24 के सेवा में 24 घंटे लगाया। इसलिए पूरी तरह से उनका शरीर आध्यात्मिक बन ही गया था, था वही शरीर लेकिन आध्यात्मिक बन गया भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से। जिस प्रकार से लोहा जब अग्नि से स्पर्श करता है तो उसके अंदर अग्नि के गुण आ जाते हैं, और उस लोहे को स्पर्श करके आपकी उंगली भी जल जाएगी। लेकिन अगर उस लोहे को आपने अग्नि से बाहर रख दिया काफी समय के लिए, तो फिर लोहा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अग्नि से स्पर्श खत्म हो गया, फिर अग्नि के गुण नहीं रहेंगे, फिर साधारण लोहा बन जाएगा। दोबारा आप अग्नि से स्पर्श कराइए, फिर से अग्नि के गुण आ जाएंगे। तो जैसे जैसे और जब जब हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, सेवा करते हैं, तब हम आध्यात्मिक भावना में होते हैं। जब भगवान को भूल जाते हैं, फिर से माया में पड़ जाते हैं, भौतिक जीवन में आ जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा भगवान के भक्तों के संग में रहें, हम श्री कृष्ण के नाम का स्मरण, कीर्तन, श्रवण करते रहें, घर में भी हम किताब प्रभुपाद जी के पढ़ते रहें, और भगवान की सेवा में ज्यादा से ज्यादा रहें। फिर हमारा शरीर भी धीरे धीरे से आध्यात्मिक हो जाएगा। इसलिए जो सन्यासी होते हैं और शुद्ध भक्त होते हैं, उनके शरीर को जलाया नहीं जाता। हालांकि वैदिक पद्धति या हिंदू पद्धति है कि शरीर को जलाया जाता है, दफनाया नहीं जाता जैसे अन्य धर्मों में होता है, लेकिन शुद्ध भक्तों का शरीर जलाया नहीं जाता। इसके पीछे कारण है, वैदिक पद्धति शरीर जलाने की क्यों है? शरीर के शुद्धिकरण के लिए, चित्त के शुद्धिकरण के लिए। क्योंकि सूक्ष्म शरीर में और स्थूल शरीर में एक संबंध रहता है, और आत्मा उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती है। लेकिन शरीर जब पूरी तरह से नष्ट हो जाता है जलाकर, तो फिर सूक्ष्म शरीर को संबंध का तोड़ना ही पड़ता है उस देह से। तो शरीर के शुद्धिकरण के लिए और सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से संबंध पूरी तरह से काटने के लिए शरीर को जलाया जाता है। लेकिन जहां शरीर दफनाया जाता है या केवल पक्षियों को खाने के लिए दिया जाता है जैसे कई अन्य धर्मों में होता है, तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे भूत भी काफी बढ़ जाते हैं और आत्मा भी वहां भटकती रहती है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका शरीर जलाया नहीं जाता, क्योंकि पहले से ही भगवान की भक्ति 24 घंटे करने की वजह से उनका शरीर शुद्ध है 24 घंटे, शुद्धिकरण का कोई प्रयोजन नहीं है वहां पर। और दूसरी बात, वैसे ही उन्होंने पूरी तरह से संसार से विरक्ति प्राप्त कर ली है, निरासक्त हैं, उन्होंने अपने शरीर से कोई संबंध रखा नहीं था, पूरी तरह से विरक्त हो गए थे, तो ये भी कारण नहीं है जलाने के लिए। इसलिए उनका शरीर भी आध्यात्मिक होता है, इसलिए उनको जैसे ही वैसे ही दफनाया जाता है। तो ध्रुव महाराज का भी ऐसा ही शरीर था, था पहले वही शरीर, लेकिन भगवान की भक्ति की वजह से पूरी तरह से शुद्ध हो गया था। हाँ जी भाई,
मृत्यु के बारे में कहते हैं कि भगवान स्वयं है, तो फिर ध्रुव महाराज पांव कैसे रखे?
नहीं, मृत्यु स्वयं है मतलब ये नहीं कि भगवान स्वयं आते हैं, मृत्यु भी भगवान का एक रूप है। जैसे यमराज वो दंड देते हैं लेकिन भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हुए, ऐसा नहीं है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आकर हर एक जीव को दंड देते हैं। दंड प्रदाता हम कहते हैं कि श्री कृष्ण है मूल रूप से, लेकिन उनकी ओर से यमराज उस काम को करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मृत्यु देव भी हैं जो आते हैं, हमें ले जाते हैं, तो वो भी भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते आते हैं। सब कुछ करने वाले तो श्री कृष्ण है, कि उनकी ओर से काम करने वाले सूर्य देव हैं जो प्रकाश देते हैं, उष्णता देते हैं, इंद्रदेव है वर्षा बरसाते हैं। तो ये सारे कार्य जो है भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हुए अन्य अन्य देवता जो है वो करते हैं। और कोई प्रश्न किसी का? आनंद सुनंद ये दोनों द्वारपाल हैं, तो जय और विजय ये कौन है? अब आप किसी बड़े से बंगले में जाइए, वहां पर भी चार पांच चौकीदार हो सकते हैं एक छोटे से बंगले में। तो क्या भगवान के वैकुंठ में दो ही चौकीदार होने चाहिए? ज्यादा नहीं हो सकते। भगवान के इतने सारे सेवक हैं, लाखों लाखों करोड़ों सेवक हैं, तो कितने सारे द्वारपाल हैं, उनके द्वार भी कितने सारे हैं। तो कितने भी द्वारपाल हो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जय विजय भी हैं, नंद सुनंद भी हैं, और बहुत सारे हैं, और आप भी बन सकते हैं भगवान। ये भी सेवा है, भगवान के शुद्ध भक्त ही इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चार कुमार ऋषियों को रोकिए मत, फिर